लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि शिक्षक विश्वसनीय गवाह बने, प्रतिस्पर्धा के बजाय भ्रातृत्व सिखाएं और सबसे कम उम्र के लोगों एवं सर्वाधिक कमजोर लोगों की मदद करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार ये आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, वर्तमान परिस्थिति में समाज की स्थिति ऐसी है कि मानव को हम उसकी धन संपत्ति में घमंड करता हुआ देखते हैं। कुछ हैं जिन्हें अपने ओहदे और समाज में अपनी ठाठ बाठ जिंदगी का गुरूर है, वहीं कुछ हैं जिन्हें अपनी शिक्षा दीक्षा और डिग्री का गर्व है, वहीं कुछ हैं जिन्हें अपने पेशे के कारण समाज में बड़े बड़े लोगों तक अपनी पहुंच का नाज है। ये हमारे मानवीय जीवन की अनुभूतियां हैं जिनके अनुरूप हम अपने को समाज में पेश करते हैं। इस भांति मानव के व्यवहार और उसके आचरण की परख हम किसी व्यक्ति के हाव भाव, उसके चलने फिरने और उसके विचार अभिव्यक्ति से कर सकते हैं कि वह किस तरह का व्यक्ति और किस तरह के मनोभाव को अपने में धारण करता है। श्रोताओं, वर्ष के चौथे सामान्य रविवार आराधना विधि चिंतन हेतु लिया गया सुसमाचार पाठ आज हमें यीशु ख्रिस्त के उस शिक्षा को प्रस्तुत करता है जिसे हम गौर फरमाते हुए न केवल अपने जीवन के रहस्य बल्कि दूसरों के जीवन के बारे में भी यह जान सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने में किस तरह के व्यक्तित्व को धारण करता है, वह कहां से आता और अपने में किस तरह के मनोभावों से ग्रसित है। आइए हम सुसमाचार में प्रभु वचनों का श्रवण करते हुए अपने को यीशु ख्रिस्त के द्वारा दिए जा रहे उस ज्ञान से पोषित करें जो हमें स्वयं के ज्ञान से परिष्कृत करेगा और उसके फलस्वरूप हम दूसरों को उचित रूप में जान और समझ पाने के योग्य पाएंगे।
ईसा विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें शांतवना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया था।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें धर्म ग्रंथ के जीवनदायी वचनों के अनुसार यीशु ख्रिस्त के मनोभावों को अपने जीवन में धारण करें जिसके अनुरूप हम अपने को दूसरों के लिए यीशु ख्रिस्त के प्रेम का साधन बना सकें।
प्रभु के चरणों में
श्रोताओ, नबी सफन्या के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमें ईश्वर की खोज, उनकी धार्मिकता और विनम्रता की खोज करने का आह्वान करता है। ये धार्मिकता और विनम्रता ईश्वर के मनोभाव हैं, जिसे अपने में धारण करना हमें स्वयं ईश्वर के सदृश बनाता है। धार्मिकता और विनम्रता ईश्वर के वे दो मनोभाव हैं, जिसके द्वारा प्रभु येसु ख्रिस्त हमें अपने को प्रकट करते हैं। इन दो गुणों को अपने में धारण करते हुए हम स्वयं अपने को येसु ख्रिस्त की तरह बना लेते हैं, जो सभी रूपों में हमारे लिए एकदम साधारण मानव बन गए। मुक्तिदाता येसु ख्रिस्त का गौशाले घर में जन्म लेना हमारे लिए उनकी नम्रता और दीनता को स्पष्ट रूप में प्रकट करता है। दुनिया का राजा जो अपने में शक्तिशाली और पराक्रमी है, इस धरा पर आने हेतु अपने लिए एक सबसे निम्नतम स्थल का चुनाव करते हैं। ईश्वर का यह चुनाव यदि हम चिंतन करें तो सचमुच में हमें आश्चर्यचकित करता है, जो हमारी और इस दुनिया के सोच विचारों से एकदम परे है। यह हमारे लिए इस कटु सच्चाई को भी व्यक्त करता है कि यदि हम ईश्वर को अपने लिए पाने की चाह रखते तो हमें उस निम्न स्तर तक उतरने की जरूरत है, जिसे हम कोलकाता की संत मदर तेरेसा और अन्य संतों के जीवन में पाते हैं। श्रोताओ, कुरुंथियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमें ईश्वर के गुणों और उनके मनोभावों को और अधिक गहराई से प्रकट करता है, जहां हम स्वयं अपने व्यक्तिगत जीवन को झांक कर देखने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। संत पौलुस हमें अपने बुलाए जाने पर चिंतन करने का आह्वान करते हैं। हम जो ईश्वर के कार्यों हेतु बुलाए गए हैं, अपने में सबसे बुद्धिमान, कुलीन, ज्ञानी और समृद्ध व्यक्ति नहीं है, बल्कि ईश्वर ने हमारी अयोग्यता में हमें अपने लिए चुना है, जिससे हम अपनी नम्रता में उनकी कृपा और आशीष पर विश्वास करें, जिसे वे हमें निरंतर प्रदान करते हैं। ज्ञानियों और शक्तिशालियों को लज्जित करने हेतु ईश्वर ने हम जैसे कमजोरों और दुर्बलों का चुनाव किया, जिससे हम ईश्वर के सामने घमंड ना करें। यह हमारे लिए इस रहस्य को प्रकट करता है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हम अपने में धारण करते हैं, वे हमारे मेहनत की कमाई नहीं, बल्कि ईश्वर की ओर से आशीष और कृपाओं के रूप में मिली हमारी समृद्धि है। अतः हमारा उन पर घमंड करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन इस तरह के मनोभाव में बने रहना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। संत पौलुस हमें कहते हैं, यदि हमें घमंड करना ही है तो ईश्वर की संगति और उनके सहचर्य पर घमंड करें, क्योंकि हमारे लिए उनके यहाँ से जीवन की सारी चीजें अनमोल उपहार स्वरूप आती हैं। वह व्यक्ति जो अपने में इस मनोभाव को धारण करता, वह अपने जीवन की हरियाली में सदैव बना रहता है। जीवन की कोई भी परिस्थिति उसे हताश या निराश नहीं कर सकती है। वह अपने जीवन की हर परिस्थिति में हमेशा जिंदा दिल बना रहता है। श्रोताओ, वही आज का सुसमाचार हमारे लिए येसु ख्रिस्त की धर्म शिक्षा के सार को उनके धन्य वचनों में एक निचोड़ सा प्रस्तुत करता है। येसु की धर्म शिक्षा में घोषित किए गए धन्य वचन हमें उनके कार्य, जीवन दर्शन और उनकी जीवन शैली का सारांश प्रस्तुत करते हैं, जो ख्रिस्तीय जीवन का सार है। येसु ख्रिस्त ने स्वयं अपने जीवन में इन धन्य वचनों को जिया, जो उनमें स्वर्गीय पिता के द्वारा दी गई धार्मिकता को प्रकट करती है, जिसका अनुसरण करते हुए हम अपने को स्वर्ग में उस महान पुरस्कार के अधिकारी बनाने में सक्षम होते हैं, जिसके लिए हमें जीवन का दान मिला है। श्रोताओ, येसु ख्रिस्त के ये धन्य वचन ख्रिस्तीय मनोभावों को व्यक्त करते हैं, जो हमारे लिए आभूषणों और श्रृंगार की भांति हैं, जिन्हें धारण करना हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुशोभित करता है। हम में से हर किसी के लिए ईश्वर ने अपने कुछ विशेष धन्य वचन को निर्धारित किए हैं जो हमारे जीवन दर्शन और कार्य शैली से मेल खाते हैं। ये धन्य वचन हमें दुनिया की नजरों में आकर्षक नहीं बनाते, बल्कि इनके द्वारा हम पिता ईश्वर की नजरों में सुंदर और आकर्षक बनते हैं। आइए हम जीवनदाता ईश्वर से निवेदन करें कि वे हमें उस मूल्य को जानने और पहचानने में मदद करें जिसे उन्होंने हमारे लिए निर्धारित किया है, जिसे जीने के लिए वे हमें प्रेरित करते और हमारे जीवन के द्वारा दुनिया के अन्य लोगों को अपने प्रेम की ओर खींचने की चाह रखते हैं।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस की प्रजातांत्रिक गणराज्य कोंगो एवं दक्षिणी सूडान में प्रेरित यात्रा के द्वारा उम्मीद की जा रही है कि इससे हिंसा के अंत को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वैटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोले ने इन दोनों देशों में पोप की प्रेरित यात्रा द्वारा दुखद घटनाओं में एक नया मोड़ आने की संभावना को रेखांकित किया है। उन्होंने साक्षात्कार में कहा, अफ्रीका पोप की प्रतीक्षा कर रहा है जिन्होंने संघर्ष एवं शोषण से चकनाचूर डीआर कोंगो और दक्षिणी सूडान की भूमि में यात्रा करने और उनसे मुलाकात करने की इच्छा को कभी कम होने नहीं दिया। 31 जनवरी से 5 फरवरी तक पोप फ्रांसिस की 40वीं प्रेरित यात्रा लोगों के बीच ईश्वचन शांति और समाज की आशा लाएगी। यात्रा जिसका दक्षिण सूडान में एक मजबूत सार्वभौमिक अर्थ होगा। पेत्रुस के उत्तराधिकारी के साथ कैंटरबरी के महादमदश जस्टिन वेल्बे और चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के मॉडरेटर इयान ग्रीनशील भी शामिल होंगे। कार्डिनल परोले ने जोर दिया कि यह ख्रिस्ती एकता का साक्ष्य होगा। विशेष रूप से यह यात्रा विभिन्न कलीसियाओं एवं स्थानीय समुदायों के तर्ज पर चलेगी जो विभिन्न कारणों से लाखों शरणार्थियों, गुरिला युद्ध, जातीय और राजनीतिक तनावों की दुखद परिस्थिति का सामना कर रहा है। पोप फ्रांसिस कोंगो और दक्षिण सूडान जाने की तैयारी कर रहे हैं जिनकी यात्रा करने की उनकी तीव्र अभिलाषा थी, लेकिन घुटने में दर्द के कारण इससे पिछले साल जुलाई में स्थगित करना पड़ा था। पोप फ्रांसिस की वहां क्या अभिलाषा है? इस सवाल के जवाब में कार्डिनल परोलिन ने कहा, हर प्रेरित यात्रा की तरह संत पापा फ्रांसिस सबसे बढ़कर लोगों के निकट आना चाहते हैं, वहां की कलीसिया और स्थानीय लोगों से मिलना चाहते हैं। कहा जा सकता है कि इस यात्रा में उनका एक खास मकसद है क्योंकि यह काफी इंतजार के बाद होने वाली है और हम दो ऐसे देशों की बात कर रहे हैं जो खुद को जारी संघर्षों के कारण अत्यंत कठिन परिस्थिति में पाते हैं। अतः पोप वहां एक चरवाहे के रूप में ईश्वर की प्रजा से मुलाकात करने जा रहे हैं। वे शांति और मेल मिलाप के एक तीर्थयात्री के रूप में भी जा रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने जेसुइट फादर जेम्स मार्टिन को एक पत्र भेजकर एपी के साथ एक साक्षात्कार में अपने बयान कि समलैंगिक होना अपराध नहीं है पर समझाया है कि कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा के अनुसार विवाह के बाहर किया गया हर यौन क्रिया एक पाप है। संत पापा ने लिखा है, मैं कैथोलिक नैतिक शिक्षा का जिक्र कर रहा था जो कहता है कि शादी के बाहर हर यौन क्रिया एक पाप है। संत पापा फ्रांसिस ने फादर जेम्स मार्टिन येसु समाजी के पत्र के जवाब में ऐसा कहा है जो अमेरिका में LGBTQ समुदाय में प्रेरित कार्य करते हैं। अपने पत्र में संत पापा ने जोर दिया है कि उनका पोजीशन कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा का है, जैसा कि 2013 में ब्राजील से वापस आते समय पत्रकारों के साथ अपने पहले साक्षात्कार में वे कह चुके हैं कि यदि एक व्यक्ति समलैंगिक है और ईश्वर की खोज करता है और सदिच्छा रखता है तो मैं उसका न्याय करने वाला कौन होता हूँ। फादर मार्टिन को जवाब देते हुए संत पापा ने कहा है कि पाप के संबंध में व्यक्ति को परिस्थिति पर भी ध्यान देना चाहिए जो गलती को बढ़ा और घटा सकता है। विश्व में करीब 50 से अधिक देश हैं जो समलैंगिक लोगों के लिए कानूनी सजा की संभावना रखते हैं।
संत पापा फ्रांसिस 3 फरवरी से 5 फरवरी तक दक्षिण सूडान की प्रेरितिक यात्रा करेंगे। संत पापा देश के नागर अधिकारियों, कैथलिकों, आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों और अन्य ख्रिस्तियों के साथ बैठक करेंगे। दक्षिण सूडान के साथ एकजुटता के कार्यकारी निदेशक आयरिश फादर जिम ग्रीन ने देश की राजधानी जूबा से वाटिकन न्यूज के जॉन बैप्टिस्ट के साथ एक साक्षात्कार में कहा। उन्होंने संत पापा फ्रांसिस की आगामी यात्रा और इसके चारों ओर प्रत्याशा निर्माण एवं ख्रिस्तीय एकता वर्धक पहलू के महत्व पर चर्चा की। संत पापा फ्रांसिस ने अपनी यात्रा के संदर्भ में नियमित रूप से खुद को शांति के तीर्थयात्री के रूप में वर्णित किया है। वह एक ऐसे देश का दौरा कर रहे हैं जो गहराई से बटा हुआ है और वर्षों के हिंसक संघर्ष से पीड़ित है। फादर ग्रीन ने जोर देकर कहा कि दक्षिण सूडान में संकट के समाधान में कुछ प्रगति पहले से ही हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर कोई संघर्ष नहीं है और सशस्त्र बलों को फिर से जोड़ने की दिशा में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि कैथलिक लोकधर्मी संगठन संत इजिदियो समुदाय देश में शांति वार्ता को सुविधाजनक बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन समूहों के साथ समावेशी शांति वार्ता करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जो पहले इसमें शामिल नहीं थे। हालांकि चल रही शांति प्रक्रिया में कुछ गंभीर बाधाएं हैं, इसके अलावा वर्तमान में कोई राष्ट्रीय संघर्ष नहीं है। स्थानीय स्तर पर कुछ अधिक हिंसा है। संघर्ष, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन से बड़ी संख्या में दक्षिण सूडानी भी विस्थापित हुए हैं। इस प्रकार अभी एक बहुत गंभीर संकट चल रहा है। फादर ग्रीन ने कहा, हमें उम्मीद है कि संत पापा की यात्रा लोगों को मतभेदों को हल करने में मदद करेगी, उन्हें एक नई प्रेरणा देगी कि पिछले मतभेदों, पिछले संघर्षों, पिछले आघातों को हल किया जा सकता है, चंगा किया जा सकता है कि समूह एक साथ आ सकते हैं और साथ साथ रह सकते हैं। उधर यूरोपीय आयोग द्वारा आयोजित यूरोपीय संघ और धार्मिक नेताओं की हाल की उच्च स्तरीय बैठक में COMECE के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें यूरोपीय संघ में यूक्रेन के युद्ध के व्यापक परिणामों और राज्य एवं कलीसिया के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के यूरोपीय संघ की नीतियों की आवश्यकता के बारे में चर्चा हुई। वाटिकन रेडियो के साथ साक्षात्कार में यूरोपीय संघ के धर्माध्यक्ष सम्मेलन के सामाजिक मामलों के आयोग के अध्यक्ष महाधर्माध्यक्ष अंतोनी हेरार्ट और कोशिचे स्लोवाकिया के ग्रीन कैथलिक महाधर्माध्यक्ष सिरिल वासिल दोनों ने कलीसिया और राज्य के बीच अधिक समन्वय और अनुवर्ती कार्यवाही की इच्छा व्यक्त की और युद्ध से उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित लोगों के लिए सहायता प्रदान करने में कलीसिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। महाधर्माध्यक्ष अंतोनी ने ठोस एकजुटता का आह्वान किया, साथ ही इस बात पर प्रकाश डाला कि यूक्रेन में युद्ध के परिणाम यूरोप की सीमाओं से परे महसूस किए जा रहे हैं और विशेष रूप से कई विकासशील देश खुद को संकट में पाते हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।